नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पनबिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल का शानदार करियर समाप्त। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है एससीओ के 25 वर्ष शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन और रूस सहित 10 देश शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता रहा है।
यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेज प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप और 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही उनके 21 साल के शानदार करियर का समापन हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 वर्ष का शानदार करियर समाप्त। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।